نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. مختصر صحیح بخاری. اس میں سے ہم کہہ رہے تھے کہ احرام کے دوران شکار کرنا یا اس کے بارے میں منع کیا جانا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. عام طور پہ چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہوتا اور ہمیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, لیکن ان چیزوں کو اس سوچ کے ساتھ پڑھا کریں اور سنا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں ہر بات کا حکم دیا ہے. تو حدیث نمبر کیا ہے اسے بولیں, 888 888 888. یہاں سے ہم دیکھیں گے کچھ مزید چیزیں. اور علم بندہ ہمیشہ اپنے لیے نہیں لے رہا ہوتا, دوسروں کو بھی دے سکتا ہے. تو لہٰذا جو بھی چیز پڑھنی ہو اس کو پڑھ کر انشاءاللہ ہم اپنے اوپر بھی اس کو لیں گے. شکار اور اس کی مثل دیگر افعال, اس میں سے حدیث نمبر 888 888. اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے تھے کہ محرم نہ تو خود شکار کرے اور نہ شکار کی طرف اشارہ کرے. ہاں اگر کوئی شکار کرے اور اس کو کچھ پیش کرے تو وہ کھا سکتا ہے. اور آخری حدیث ہم نے جنگلی گدھے کے بارے میں پڑھی تھی کہ اگر کوئی دوسرا شکار کر کے آپ کو دے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آج ہے ما یقتل المحرم فی الحرم. محرم کون ہوتا ہے؟ جو احرام کی حالت میں ہو. حرم میں کن جانوروں کو مار سکتا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس من الدواب کلہن فاسق یقتلن فی الحرم الغراب والحداءۃ والاقرب والفارۃ والکلب الاکور. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پانچ جانور ایسے موذی ہیں کہ انہیں حرم میں بھی مار دیا جائے, کوا, چیل, بچھو, چوہا اور کاٹنے والا کتا. تو یہ پانچ جانور جائز ہے. کیوں بھلا؟ موذی ہے نا, تکلیف دیں گے. اچھا کوا بھی اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو تو کووں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, تو بعض کوے جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو ٹھونگے مار مار کے زخمی بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ایسا کوئی جانور یا کیڑا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کسی کو بھی تکلیف دے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. پھر اس سے یہ بھی کہ واجب القتل, مجرم اگر حرم میں پناہ گزین ہو تو اس کو بھی مارا جا سکتا ہے. عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غار بمنا اذ انزل علیہ والمرسلات وانہ لیتلوہا وانی لا تلقاہا من فیہ وان فاہ لرتب بہا اذ وثبت علینا حیت فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوہا فابتدرناہا فذہبت فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقیت شرکم کما وقیتم شرحا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کی ایک غار میں تھے, اتنے میں سورۃ المرسلات آپ پر نازل ہوئی جس کی آپ تلاوت فرمانے لگے اور میں بھی آپ سے سن کر یاد کرنے لگا, اور آپ کا روح مبارک تلاوت سے ابھی تر و تازہ تھا کہ اچانک ایک سانپ ہم لوگوں پر کودا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار ڈالو. چنانچہ ہم نے اس کو مارنے کی جلدی کی مگر وہ نکل گیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اس کے ضرر سے بچا لیے گئے ہو اسی طرح وہ بھی تمہارے ضرر سے بچا لیا گیا ہے. اب منا میں تھے تو ظاہر ہے کہ احرام میں تھے نا, حج کی بات ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک محرم کو بمقام منا سانپ مارنے کا حکم دیا, تو کیا پتہ چلا کہ احرام کی حالت میں اگر ایسا کوئی جانور آئے تو اس کو مارا جائے گا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی, ان سے روایت ہے ان رسول اللہ قال للوزغ کویسق ولم اسمعہ یامرنا بقتلہ. چھپکلی کے بارے میں فرمایا, للوزغ, وزغ کس کو کہتے ہیں؟ چھپکلی کو. فرمایا یہ موذی جانور ہے مگر میں نے نہیں سنا کہ آپ نے اس کو مارنے کا حکم دیا. یعنی کویسق کا معنی کیا؟ تکلیف دیتی ہے, موذی ہے, کاٹتی ہے, لیکن مارنے کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں یہ نہیں بتایا. दूसरी रिवायत से पता चलता है कि छिपकली को मारने का हुक्म है। ला यहिल्लुल किताल बी मक्का था, मक्का मुकरमा में जंग जायज नहीं। अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम फतह मक्का था ला हिजरत वलाकिन जिहादु वनीयतुन व इज़ा उस्तुनफिरु फनफिरु। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के रोज़ फरमाया, अब हिजरत बाकी नहीं रही, अलबत्ता जिहाद कायम और नीयत बाकी रहेगी, और जब तुमसे जिहाद के लिए निकलने का कहा जाए तो निकल खड़े हो। इस हदीस में अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा की हुरमत को ज़मीन व आसमान की पैदाइश के दिन से बरकरार रखा है और क़्यामत तक बाकी रहेगी। तो क्या पता चला, मक्का में जंग नहीं हो सकती, फतेह मक्का के दिन थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला ने उसको जायज़ किया था, अब नहीं है। इसीलिए आपको था कि आम जगहों की निस्बत खाना कापा में जाकर कोई इस तरह का शर फैलाना या कोई फसाद कराना, ये आम जगहों से ज़्यादा बड़ा फितना होगा। अल हिजामत लिल मुहरिम, मुहरिम के लिए पचने लगवाना। पचने लगवाने क्या होते हैं? हिजामा करना। अब इब्ने बुखैना था रदी अल्लाहु अन्हु काला काला इहतजमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा मुहरिमन बिलहि जमलिन फी वसत रासिही। हजरत इब्ने बुखैना रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकामे लुहई जमल में बहालत एहराम अपने सर के दरमियान पचने लगवाए। तो जब पचने लगवाते हैं तो आपको पता है कट लगते हैं ना, तो ब्लड निकलता है, तो फिर खून निकलवाना, ऑपरेशन करना, रग कटवाना, दान निकलवाना जायज़ है, कोई हुक्म होना चाहिए, यानी मजबूरी है अगर ऐसी तो ऐसा काम किया जा सकता है। तजवीजुल मुहरिम, मुहरिम का निकाह करना। अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वज मैमूना तबाहुवा मुहरिम। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहालत एहराम हज़रत मैमूना रदी अल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। अब इमाम बुहारी का ये मौक़िफ़ है कि मुहरिम निकाह कर सकता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहरिम को ऐसा करने से मना किया। सही मुस्लिम में हज़रत मैमूना और इनके ग़ुलाम अबू राफे का बयान भी इब्ने अब्बास की इस रिवायत के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा इस बिना पर यह रिवायत मरजू या काबिले तावील है। यानी अगर निकाह भी किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये आम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आपको पता ना कि एहराम की हालत में शौहर बीवी का ताल्लुक जायज़ नहीं है, तो लिहाजा अगर ऐसा कोई इस्तिस्नाई सूरत आती भी है तो उम्मत के लिए उसमें हुक्म नहीं है। अल इख्तिसालु लिल मुहरिम, और निकाह होना और बात है और ताल्लुक कायम होना और बात है। ये भी हो सकता है कि निकाह आपका हो गया हो लेकिन आप अपनी बीवी के पास ना गए हों, तो लिहाजा आम हालात में जो हुक्म आम है उसको हम आप समझेंगे। अल इख्तिसालु लिल मुहरिम, मुहरिम का नहाना। अन अबी अय्यूब अल अंसारी रदी अल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ीला लहु कैफ़ कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलु रासहु व हुवा मुहरिम फबदा अबू अय्यूबा यदहु अला सौबी फतऊताअहु हत्ता बदा ली रासुहु सुम्मा काला ली इंसाने यसुब्बु अलैहि उसबुब फसब अला रासिही सुम्मा हर्रक रासहु बियदैही फकबल बिहिमा व अदबरा व काला हाकजा राइतुहु यफलु। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि इनसे पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत एहराम सर किस तरह धोया करते थे, यानी एहराम की हालत में सर धोने से बाल गिरने का डर होता है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु ने अपना हाथ कपड़े पर रखकर इसे इतना नीचे किया कि मुझे आपका सर नजर आने लगा। फिर एक शख्स से पानी डालने के लिए कहा, इसने आपके सर पर पानी डाला। उन्होंने अपने सर को दोनों हाथों से हिलाया, हाथों को आगे लाया और पीछे ले गया और कहा, मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे ही करते देखा। मुहरिम के लिए गुस्ल जनाबत तो बिल इत्तफाक जायज़ है, अलबत्ता गुस्ल नज़ाफ़त में इख्तलाफ है। गुस्ल नज़ाफ़त क्या होता है? गंदगी दूर करने के लिए, यानी जिसमें फ़र्ज तो नहीं होता लेकिन आप सफाई की नीयत से गुस्ल करते हैं, तो वो किया जा सकता है कि नहीं, इसमें इख्तलाफ है। इस हदीस का आगाज़ यूँ है कि हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा और हज़रत मिसवर बिन मुहरमा का मुहरिम के लिए सर धोने के मुतल्लिक इख्तलाफ हुआ, तो उन्होंने अबू अय्यूब से पूछा। लेकिन सही बात चाहिए कि हराम में भी बंदा गुस्ल कर सकता है। आपने देखा जिस तरह से सर लटका के धोया गया तो उसमें मलने वाली सूरत या साबुन लगाने वाली नहीं है, तो फिर उसमें बाल नहीं टूटते, और वैसे भी खुद से बाल नहीं तोड़ सकते, काट सकते। अगर खुद बहुत कोई बाल टूट जाता है तो फिर इंशाल्लाह उसको इग्नोर किया जाएगा। दुखूलुल हरम ही व मक्का त बगैर एहरामिन, मक्का और हरम में बगैर एहराम के दाखिल होना। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के साल मक्का में दाखिल हुए तो आपके सर पर एक खौत था। क्या? अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहल आमल फतही वाला रासी मिगफरू। मिगफर किसको कहते हैं? सर के ऊपर एक खौद होता है। खौद क्या होता है? लोहे की टोपी जो दुश्मन से बचाती है। गफर असल में कहते हैं छुपाने को। फलम्मा नज़ाहु जा रजुलुन फ़काला इन्नबना खतलिन मुतअल्लिकु बिअस्तारिल काबती फ़काला उक्तलुहु। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के साल मक्का में दाखिल हुए तो आपके सर पर एक खौत था। आपने इसे उतारा तो एक शख्स आपके पास आकर कहने लगा, इब्ने खतल काफिर काबा के पर्दों में लटका हुआ है। आपने फरमाया इसे वहीं कत्ल कर दो। क्या पता चला कि दुश्मन के मुतवक्के हमले के पेश नज़र हिफाजती इकदाम करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, और हरम मक्का में शरई हदूद कायम की जा सकती हैं, इससे ये पता चलता है। अब ये कौन करेगा? आप और मैं तो नहीं करते ना, ये तो हुक्मरानों का काम होता है, लेकिन बहरहाल इसकी इजाज़त है। अलहज व नजूर व अनिल मैयती व रजुलू यहुज्जु अनिल मरअती। मैयत की तरफ से हज और नजर का पूरा करना, नीज मर्द का औरत की तरफ से हज करना। अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा अन्ना मरातन मिन जुहैनता जात इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकालत इन्ना उम्मी नजरत अन तहुज्जा फलम तहुज्जा हत्ता मातत अफ अहुज्जु अन्हा। काला नाम हुज्जी अन्हा अरअयती लौ काना अला उम्मी की दीनुन अकुंती कादियतन अन्हा उक्दुल्लाह फल्लाहु हक्कु बिल वफा। बड़ी प्यारी रिवायत है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कबीला जुहैना की एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और अर्ज किया कि मेरी माँ ने हज करने की मन्नत मानी थी, लेकिन वो हज से पहले ही फौत हो गई, क्या मैं इसकी तरफ से हज करूँ? आपने फरमाया, हाँ तू इसकी तरफ से हज कर, भला अगर तेरी माँ पर कुछ कर्ज होता तो तू उसे अदा करती? फिर अल्लाह का कर्ज भी अदा करो, इसकी अदायगी तो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का हक अदा करने में मर्द और औरत सब आगे, यानी मर्द का औरत की तरफ से और औरत का मर्द की तरफ से हज करना बिल इत्तफाक जायज़ है, और इससे ये भी मालूम हुआ कि मैयत की तरफ से हज करना जायज़ है। ये कौन सा हज होगा? नफली हज की नीयत की थी ना उसने। हज्जु सिबियान, बच्चों का हज करना। अन साहिब इब्ने यजीद रदी अल्लाहु अन्हु काला हज बी मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना इब्नु सबी सिनीन। हजरत साहिब बिन यजीद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज कराया गया था जबकि मैं उस वक्त 7 बरस का था, 7 ईयर्स का था। सही मुस्लिम में कि एक औरत ने अपना बच्चा उठाकर रसूलुल्लाह से पूछा कि इसका हज सही है? आपने फरमाया, हाँ तुझे इसका सवाब मिलेगा। इससे मालूम हुआ कि बच्चे का हज मशरू है, यानी शरण जायज़ है, लेकिन यह हज फ़र्ज को साकित नहीं करेगा बल्कि बलूग के बाद फ़र्ज हज करना होगा। हमारे यहाँ ये ना कि अगर बचपन में कर लिया तो बड़े हो के लाजिम हो जाएगा, ये दुरुस्त नहीं है। बचपन के हज का बड़े होने के हज से ताल्लुक नहीं है। अगर बच्चा कोई करता है या माँ बाप उसको करवाते हैं तो ये माँ बाप का अजर है, लेकिन अगर बच्चा बाद में बड़ा होकर हज की वो सारी चीज़ें उसके ऊपर आती हैं तो फिर वो हज करेगा। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि अच्छा बच्चों को हज हम ना कराएं वरना फ़र्ज हो जाएगा। और बार बार ये टॉपिक आता है तो हम सबको भी देखना चाहिए कि हम हज कर चुके हैं कि नहीं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इधर उधर घूमते फिरते पाकिस्तान भी जाते हैं लेकिन अगर मालूम करें तो उन्होंने हज नहीं किया होता। बहुत ख़तरे की बात है। देखिए इतना बड़ा ये इस पे वईद है कि हज के बगैर अगर इंसान चला गया सोचा भी नहीं तो यहूदियों के मरे या नसरानी। तो इसलिए पहली फुर्सत में अपना अपने बच्चों का अपने शौहरों का हज पूरा करवाएं ताकि कम से कम पिछली ज़िंदगी के अभी तक के गुनाह तो हमारे माफ़ हों और फ़र्ज भी एक पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। हज्जुन निसा, औरतों का हज करना। अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा काला लम्मा रजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हज्जती ही काल ली उम्म सिनानिल अंसारिया। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से वापस हुए तो उमे सिनान से फरमाया, तुम्हें हज से किस बात ने रोका था? इसने अर्ज किया कि फलां शख्स यानी शौहर के हमारे पास दो ऊंट पानी भरने के लिए थे, एक पर तो वो हज को चले गए और दूसरा जमीन से राब करने के लिए था। आपने फरमाया, अच्छा तुम उमरा कर लो, रमजान में जो उमरा करेगा वो मेरे साथ हज के बराबर होगा। सवाल क्या था आपका? मा मना की मिनल हज्जी, कालत अबू फलान तानी जौजहा, कान लहू ना दिहानी हज्जा अला अहदिहिमा वलाखरु यस्की अर्दन लना, قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجته معي। देखिए पहले लोगों के पास ऊँट ही होते थे ना, तो उसी पे सफ़र करते थे, तो इससे क्या पता चलता है कि रमज़ान में उमरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, लेकिन रमज़ान में उमरा करने से फ़र्ज हज काफ़ी नहीं होता, वो फिर भी होगा। इसमें तो उसका सवाब बयान किया गया ना, तो रमज़ान में उमरा करने की रगबत दिलाई गई है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि रमज़ान में उमरा कर लें तो अब हज नहीं करना पड़ेगा। عن ابي سعيد رضي الله عنه فقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وانفقتني أن لا تسافر المرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطري ولدها ولا صلاة بعد الصلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا على ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى। आप देखिए कि अल्लाह के नबी से कोई एक बात कहता था ना, तो आप उसके बारे में पूरी तफसील से बात बताते थे। जैसे कि यहाँ आपको मिलेगा अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह के साथ 12 गजवात में शरीक हुए। फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चार बातें सुनी हैं जो मुझे बहुत अच्छी और भली मालूम होती हैं। एक ये कि कोई औरत दो दिन का सफ़र बग़ैर महरम या खामंद के ना करे, ईद उल फितर और ईद उल अदहा का रोज़ाना रखा जाए, और नमाज असर के बाद ग़ुरूब आफ्ताब तक और सुबह की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब तक कोई नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, और तीन मस्जिदों में मस्जिद हराम और मेरी मस्जिद और मस्जिद अक्सा के अलावा किसी की दूसरी मस्जिद की तरह रखते सफ़र ना बांधा जाए। अब आप देखिए तीन चीज़ें हैं ना, एक तो औरतों के महरम की बात है, अगर महरम है ही नहीं तो हज फर्जी नहीं, आप क्यों अपने ऊपर बोझ लेते हैं, करना तो अल्लाह के लिए है ना। तो झूठ बोलकर अजनबियों को महरम बनाकर हज पर ले जाना दुनियादारी के अतबार से हो सकता है किसी को इसका ना पता चले, लेकिन अल्लाह के यहाँ अपने आप को क्यों मुश्किल में डालना। और दूसरा बात यह है कि हदीस की मुखालफत और झूठ भी है, और ये सवाब की बजाय गुनाह का काम है। दुआ करें अल्लाह से, जैसे हम पाकिस्तान में थे तो मुझे याद है हमारे दरसों में और क्लासेस में एक सिस्टर आती थी, तो वो या मुतल्लिका थी या बेवा थी, तो वो बहुत हसरत रखती थी ना हज की, लेकिन उनके पास कोई महरम नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे शादी करनी है इसलिए कि मैं हज करूँ। अब आप देखिए ना, अल्लाह नियतों को जानता है। फिर उनकी शादी हुई किसी शख्स के साथ, और वाकई उन्होंने फिर उनके साथ हज किया, और उसके बाद फिर शायद वो फौत हो गए या क्या हुआ, यानी सिर्फ उनकी नियत ही बुरी हुई। तो औरतों को तन्हा रहना ही नहीं चाहिए, अगर ऐसे हालात है शादी करके फिर चली जाए, सही महरम हो तो और बात है, लेकिन हमारा तो सारा कल्चर ही गड़बड़ पे है, हम तो इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब बुढ़ापे में कोई औरत शादी करे, कौन कहेगा इसने हज के लिए की है, वो तो अपने तौर पे बातें समझेंगे ना। इस हदीस में दो दिन है, कई जगह में एक रात और दिन का भी आता है, और वो भी है कि इतनी दूर के जहाँ दूसरा शहर, यानी मीन ओवरनाइट कह लें जी। मन नजर अल मशय इलल काबती, जो शख्स काबा तक पैदल जाने की नियत कर ले या मन्नत माने। अन अनस रदी अल्लाह अनहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा शेखन जुहादा बैना इब्नैही قال ما بال هذا قالوا نظر ان يمشي قال ان الله ان تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يرقب। حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا، آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے پیدل جانے کی نظر مانی ہے، آپ نے فرمایا یہ اپنی جان کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے، پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو کر جائے۔ तो रसूलुल्लाह ने अपनी नजर को पूरा करने का इसको हुक्म नहीं दिया, क्योंकि ऐसे हालात में सवार होकर हज करना पैदल हज करने से ज्यादा फजीलत रखता है, और इसलिए कि इसमें पैदल चलने की सकत नहीं थी। अब बताइए भला इससे अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है? देखिए बहुत सारे लोग हैं इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, अब मैं धूप में चलूंगी तो भी आप चलेंगी तो अल्लाह को क्या फर्क पड़ेगा? नेकी का वो काम जिससे आपको फायदा है या किसी दूसरे को फायदा है, बात बनी। लेकिन इस तरह की नेकियों से अपने आप को ज्यादा फायदा नहीं दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो लिहाजा इन चीज़ों में अपने आप को केयरफुल रखना चाहिए। अन उकबत इब्ने आमिर रदियल्लाहु अन्हु काला नजरत उख्ती अन तमशी इला बैतिल्लाह व अमरतनी अन अस्तफ्तिया लहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्तफ्तैतु लहा फकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितमशी वल तरकब। हजरत उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया मेरी बहन ने बैतुल्ला तक पैदल जाने की नजर मानी, मुझे हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में सवाल करूं। चुनाचे मैंने रसूलुल्लाह से सवाल किया तो आपने फरमाया कि वो पैदल भी चले और सवार भी हो जाए। एक रिवायत में कि वो कमजोरी की बिना पर इस नजर को पूरा करने से आजिज थी, तो रसूलुल्लाह से इसकी कमजोरी के मुतालिक शिकायत भी की गई, तब आपने ये हुक्म सादर फरमाया। तो बात यह है कि अल्लाह ताला बेनियाज है, आपको मुझे सवाब देने से, अजर देने से वो नेकियां करें जिससे मखलूक खुदा का फायदा हो, एक दूसरे को खैर दें। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर पूरा हुआ। अगला चैप्टर मनाकिब मदीना यानी मदीना मुनव्वरा के फजाइल है। अपनी उन सारी दोस्तों को बुला लें, आपके गुमान में जो ये कहते हैं कि हम मदीना की बातें नहीं करते, तो उनको अगला टॉपिक सुनवा दें, ठीक है? इंशाल्लाह तआला, चलिए ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।